Shanti, the art of sakas में कल हम सभी ने क्या सुना, यानी सकास देने में किन किन बातों की आवश्यकता नहीं है। आज अभी हम देखेंगे सभी कि सकास देने में किन किन बातों की कठिनाई आती है। तो बाबा ने तीन प्रकार की सेवा बताई है हम सब बाबा के बच्चे को कि मनसा वाचा कर्मना। तो मनसा द्वारा क्या करना है, वाइब्रेशन फैलाने सकास देनी है। वाचा द्वारे यानी बाबा का संदेश देना है, हर एक आत्मा तक ज्ञान पहुंचाना है। और कर्मना द्वारे यज्ञ सेवा करनी है। तो मनसा वाचा कर्मना इन तीनों सेवा में से सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है, मनसा सेवा है। क्योंकि जैसी वाचा और कर्मना सेवा कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे भी रही या अशांत भी रहा तो भी वो ज्ञान सुना सकता है या यज्ञ सेवा कर सकता है। लेकिन जो मनसा सेवा है उसके लिए क्या चाहिए, स्थिति ऊंची चाहिए। एक वरदान में बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा करने के लिए स्थिति पावरफुल चाहिए, जिनकी स्थिति पावरफुल है वही मनसा सेवा कर सकते हैं। तो जैसी वाचा की सेवा है, यदि नया स्टूडेंट है, समझो नया बाबा का बच्चा, नया नया ज्ञान में आया, उनका 7 डेज का कोर्स हुआ और यदि 8वें दिन में उसको बोलेगा बाबा का परिचय दो तो वो दे सकता है, ज्ञान भी सुना सकता है, 1 घंटे का भाषण भी कर सकता है। लेकिन मनसा सेवा के लिए, सकास देने की सेवा के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता है, कुछ पात्रता की आवश्यकता है। यदि वो हमारे अंदर है तो हम वो सेवा कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वो सकास देने की सेवा में यानी किन किन बातों की कठिनाई आती है। ऐसी 10 बातें हमने निकाली है, तो उस 10 बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहली है स्वरूप की विस्मृति, यानी जैसा स्वरूप है, यानी स्वरूप की विस्मृति यदि हो गई तो हम सकास देने में कठिनाई आ सकती है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात आत्मिक स्थिति को भूल कर हम यदि देह भान में आ गए तो देह भान में आए तो फिर सकास हम नहीं दे सकते, यदि देंगे भी तो उस सकास में सफलता नहीं मिलेंगी। इसलिए बाबा ने बताया है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, देह भान को भूलना है और आत्मा का स्थिति में रहना है। क्योंकि हमारे 63 जन्म से हम देहाभिमान में है तो इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कितनी प्रैक्टिस की, बहुत काल का अभ्यास किया उन्होंने। जब भी बाबा ने पहला पाठ दिया था कि आप आत्मा है, तो बाबा ने हर एक शरीरधारियों की आत्मा देखते थे। वो उनके सामने जो भी आता था, जैसे उनके लौकिक परिवार के लोग, जैसे यशोदा माता आती थी उसको भी वो आत्मा समझते थे, और जैसे नारायण दादा है उसको भी आत्मा समझते थे, और जो भी उनके सामने आता था हर एक व्यक्ति को वो आत्मा समझते थे। ऐसे बहुत समय से उनने क्या प्रैक्टिस की, तभी उनको स्थिति प्राप्त हुई। इसके कारण ब्रह्मा बाबा के देश विदेश में बाबा के बच्चे को क्या होता था, यानी उसका फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होता था। और कई ऐसी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, उनके कारण बाबा के बच्चे बने। तो सकस देने के लिए क्या चाहिए, यानी स्मृति, आत्मस्थिति की स्मृति चाहिए। यदि आत्मस्थिति की स्मृति नहीं तो फिर हम सकस नहीं दे सकते, उसमें कठिनाई आ सकती है। दूसरी बात है कि शुभ भावना शुभ कामना देने में अनबैलेंस। यदि शुभ भावना शुभ कामना देने में हमने मतभेद नहीं करना चाहिए। यदि किसी आत्मा के साथ बहुत हमारा अच्छा संबंध है तो उसको यदि हम शुभ भावना देंगे, और किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं क्योंकि उन्हें बहुत समय से हमें दुख दिया है, उसके व्यवहार ठीक नहीं, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया है, हम क्या, हम उस आत्मा के प्रति हमारे क्या रहती, अशुभ भावना रहती। यदि इस भाव से हम सकस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सकस में कठिनाई आ जाएंगी, यानी सफलता नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें सकस तो सभी को देना, ऐसा नहीं कि अभी सकस देने के लिए बैठे समझो। यदि किसी आत्मा के प्रति हमारा मतभेद हुआ है, हमें उसने दुख दिया है, तो सकस देने में वही आत्मा की हमको याद आएगा ना। यदि वो बातें याद आई तो फिर हम सकस नहीं जाएंगे हमारा उस आत्मा तक जिसको देना है। तो पहले हमारे मन को समझाना है, जिनके प्रति हमारी निगेटिव भावना है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। यदि किसी ने हमें बहुत समय से दुख दिया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है समझो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कि अपने मन को समझाना पड़ेगा कि वो आत्मा का ड्रामा है, हमारा कई जन्म का हिसाब किताब होगा, इसलिए हमें वो दुख दे रहा है। तो ऐसे समझा करके उसके प्रति जो निगेटिव भावना है उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करेंगे तभी हम सकस दे सकते हैं और सभी का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बाबा ही बोलते कि यदि कोई हमें दुख भी दे भी तो भी हम उसके प्रति अच्छी भावना रखोगे, उसका भी कल्याण की भावना रखनी, जो सुख देते हैं उसके प्रति हमारी भावना कल्याण की रहती है। तो ये करना है, यानी निगेटिव को पॉजिटिव करना है, यानी शुभ भावना शुभ कामना देते समय हमें भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक जैसे देना है, तब वो क्या हो जाएंगी, सफलता मिलेगी हमें सकस देने में, नहीं तो कठिनाई आ सकती है। तीसरी बात कि कनेक्शन में प्रॉब्लम। तो किसके कनेक्शन में प्रॉब्लम, यानी आत्मा और परमात्मा, ये दोनों के साथ हमें कनेक्शन रखना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा से हम लेंगे, क्योंकि परमात्मा दाता है, क्योंकि किसी को हमें शक्ति देनी है तो हमारे अंदर तो उतनी शक्ति है ही नहीं, तो परमात्मा से लेकर के आत्मा को देना है हमको। जैसा कोई दलाल रहता है वो क्या करता है, कस्टमर और बिजनेसमैन, ये दोनों से उनका संबंध अच्छा रहता है तभी तो वो बिजनेस कर सकेंगे ना। तो वैसा परमात्मा से हमें लेना है तो परमात्मा के साथ भी हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे और आत्मा के साथ भी हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी दृष्ट, यानी उसके प्रति अच्छी भावना रखनी पड़ेगी, शुभ भावना रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी, उसका एक कल्याण हो जाए तभी हमारा उनके साथ संबंध अच्छा रह सकता है। और परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमात्मा का जो दिन भर है यानी चिंतन, यानी परमात्मा की याद में रहना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं निरंतर मेरे याद में रहो, तो बाबा के याद में रहना पड़ेगा, जो बाबा ने हमें श्रीमद दी है उस श्रीमद अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और जो भी बाबा की मुरली है उसका मनन चिंतन करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास समय है तो समय निकाल करके उस समय उस मुरली का मनन चिंतन करना पड़ेगा। अभी कई लोगों को है कि मुरली सुनने के लिए समय नहीं मिलता, ऐसा हमारा है डिपार्टमेंट कि हमको वो समय भी नहीं मिलता मुरली सुनने के लिए, क्योंकि उस समय हमारी सेवा रही थी, सेवा छोड़ के हम मुरली सुन नहीं सकते, तो फिर बाद में मुरली पढ़ लेते एक दो बार। तो ऐसा पढ़ना चाहिए, और उसमें पढ़ने से भी नहीं होगा तो उससे कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट निकालने चाहिए एक दो, और वो दिन भर में उस पॉइंट पर थोड़ा मनन चिंतन करो, तो उससे क्या हो जाएगा, दिन भर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, और जुड़ा रहने से बाबा की याद रहेगी, क्योंकि वो सागर है उसको तो आप सुभावना रखो चाहे ना रखो, क्योंकि वो तो सभी को सुभावना देता है, उसके वाइब्रेशन पड़ते ही निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, निरंतर यानी वो मुरली के पॉइंट को चिंतन करना पड़ेगा, तभी बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, और तब बाबा से शक्ति लेकर हम आत्माओं को दे सकेंगे। यदि वो कनेक्शन हमारा जो ठीक से नहीं है तो फिर हम सका देने में विघ्न रूप बन सकती है, यानी कठिनाई आ सकती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा है यानी स्टॉक में भरपूरता चाहिए। तो कौन सा स्टॉक? जो शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक है, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, ये स्टॉक हमारे पास भरपूर रहेगा तो हम किसको दे पाएंगे। और बाबा के साथ भी संबंध जोड़ना है तो उसके लिए बाबा के साथ हमको रूह रियान करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ज्ञान का बहुत सारा स्टॉक चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार से हम बाबा के साथ रूह रियान कर सकते हैं और दूसरे को कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान का स्टॉक है वो हमें भरपूर करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? मुरली में से। तो मुरली से हम ज्ञान, यानी हर दिन की मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली से जे जे पॉइंट अच्छे हो तो निकालो, उसका मनन चिंतन करो तो हमारा ज्ञान का स्टॉक भरपूर हो जाएगा। जी सेवा का बाला बहाना नहीं देना है, सेवा का बहाना नहीं देना है कि अभी सेवा है, बानेबाजी नहीं करना है, क्योंकि समय निकाल करके मुरली का मनन चिंतन करना है। तो इस प्रकार बाबा से हमारा संबंध जुड़ा रहेगा और स्टॉक ज्ञान का स्टॉक हमारे पास भरपूर हो जाएगा। दूसरा गुणों का, क्योंकि हमको श्रेष्ठ कर्म करने और श्रेष्ठ कर्म द्वारा गुणों का भी खजाना हमारे अंदर भरना है। और तीसरे शक्तियों का खजाना, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा हमें शक्ति जो बाबा ने अष्ट शक्तियां दिए वो अष्ट शक्ति की बहुत जरूरत है। उसमें से सबसे यानी सहन शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण आत्माएं बहुत सारे सेंसिटिव रहते हैं। थोड़े किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम उसको किनारा कर देते, यह हो जाते। तो इसलिए सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। यदि किसी ने हमें दुख भी दिया है, समझो कोई के संस्कार ठीक नहीं हमारे साथ, तो टकराव होता रहता है, हमें क्या करना है? सहन करना है। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना, यदि इस समय आप सहन करेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे? आप सहनशील बनेंगे। तो हमें सहनशील बनना है तो हमें वो सहन शक्ति की अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना सहन करो, यानी नहीं बाबा ने इतना ज्ञान दिया है ना, यदि कोई बार बार हमें तो हिसाब किताब समझो, यदि वो आत्मा बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, बार बार संस्कार टकराव हो रहा है, तो समझो कई जन्म का हिसाब किताब होगा उनके साथ, इसलिए वो चुक्त हो रहा है। या उसको पार्टी मिला है वैसा, जैसा रावण को जो पार्टी मिला था, तो वो अपन बोलने से वो थोड़ी चेंज करेंगे, जो पार्टी मिला उसको तो रावण समझा नहीं है, लेकिन पार्ट उनका पार्ट समझने का, जो पार्ट मिला है वो बजा रहा है, उसमें साक्षी होकर उसके पार्ट को देखना है। हाँ, वो शिक्षक बने, उससे अपन को सीख मिलती है ना। जैसे समझो कोई रावण जैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तभी ये समझना चाहिए कि वो हमें आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहा है, उसके कारण हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार यानी हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है। तो ऐसा सहन करना है, तो सहन करने से हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। और दूसरी समाने की शक्ति, क्योंकि हमें समाने की शक्ति भी हमारे अंदर चाहिए। कोई आत्मा कुछ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारी बुराई है समझो, तो हमें उसको समाना चाहिए। जैसा सागर है, सागर में कीचड़ा काड़े जो भी डालेंगे वो सब समा लेता और गंभीर रहता है, तो उस प्रकार हमें हर एक आत्मा की कमी कमजोरी अपने अंदर समानी है और उसको शुभ भावना देनी। जैसे मम्मा के यज्ञ में मम्मा के बारे में बताते कि मम्मा के अंदर समाने की शक्ति बहुत थी, पावरफुल थी। तो कभी जो भी आत्मा है समझो, जो भी अपनी कमी, जो कभी कभी ऐसी कमी कमजोरी रहती थी कि दूसरे को बताना नहीं, ऐसी कमी कमजोरी कोई आत्मा मम्मा को बताती थी, तो मम्मा वो सुन लेती थी उनकी और अपने अंदर समा लेती थी और उसको कमी कमजोरी को ठीक कैसा करना है उसके लिए कुछ डायरेक्शन भी देती थी। यदि समझो किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी है और एक निमित्त आत्मा को उसने बताया और यदि वो आत्मा तीसरे व्यक्ति को बता दिया समझो, तो फिर वो आत्मा का क्या होगा? उसके प्रति रिगार्ड कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको बताया अपनी कमी कमजोरी वो ठीक करने के लिए, तो उसने लीकेज कर दिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, किसी ने बताई तो अपने अंदर समा लेना चाहिए और उसके अनुसार उसको डायरेक्शन देना चाहिए। और मम्मा भी, जैसे दो व्यक्ति का मतभेद हो जाता था वो उनके पास आते थे, तो मम्मा दोनों का भी सुन लेती थी और अपने अंदर समा करके दोनों की कैसी उन्नति हो जाएंगी इसके बारे में उसको सजेशन देती थी। तो इस प्रकार शक्तियाँ का भी स्टॉक हमारे अंदर जमा करना पड़ेगा। तो जब शक्तियाँ गुण ज्ञान और शक्तियाँ का स्टॉक हमारे अंदर रहेगा तो हम किसको सकास दे सकेंगे, सकास में सफलता मिलेंगे हमको। कितने हो गए? तीन हो गए, और तीन का चार हो गए। चार हो गए और पांचवा है मनसा वाचा कर्मना पवित्रता रहना है, पवित्र रहना है। मनसा वाचा कर्म सॉरी अपवित्र, यदि मनसा वाचा कर्म नाम अपवित्रता है तो सकार देने में कठिनाई आ सकती है, इसलिए हमें पवित्रता की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने सबसे पहले जब हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने हमें वरदान दिया है कि योगी भव पवित्र भव, और पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं का फाउंडेशन है। यदि वो हमारे अंदर है तो हम सब कुछ सकास भी दे सकते, इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। दुनिया के लोग पवित्रता को असंभव समझते, साधु सन्यासी लोग है वो असंभव है बोलते, मगर हम ब्राह्मण आत्मा ने क्या क्या उसको संभव करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया। किसके कारण? क्योंकि बाबा ने यानी जैसे हमको पवित्र रहने की श्रीमत भी दी है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने शक्ति भरी हमारे अंदर, तो उस शक्ति के आधार से बाबा के याद से हम वो पवित्रता की शक्ति अपने अंदर धारण करते हैं। तो यदि पवित्रता की शक्ति रहेंगी हमारे अंदर तो हम जिस भी आत्मा को सकास देंगे वो उसके वहां तक पहुंच जाएगा और वो सफलता हो जाएगा। तो इसलिए यदि अपवित्रता है तो फिर हम सकास देने में कठिनाई आ सकती है। और छठवां पॉइंट है यानी आलस्य और अलबेलापन। यदि हमारे अंदर आलस्य और अलबेलापन है तो भी सकास देने में क्या आ जाएंगी, कठिनाई आ सकती है। इसलिए आलस्य और अलबेलापन दिखता है छोटापन तो बहुत बड़ा विकार है। उसकी जो वशीभूत आत्माएं रहती है तो उसके यानी वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकती, यशस्वी नहीं हो सकते है। तो जैसा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर समझो किसी व्यक्ति में आलस्य है लेकिन उसने हिम्मत की है कि किसी आत्मा बहुत बीमार है, उसको बीमारी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए मैं उनको सकास दूंगा। यदि उसके लिए उसने 11 दिन का यानी सकास देने का प्रोग्राम बनाया और उसने समय निश्चित किया कि अमृत वेला मैं उसको सकास दूंगा, उसी कारण उसकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। यदि पहले दिन उसने उसको सकास दे दिया सब ठीक ठाक हो गया, दूसरे दिन गया ऐसे एक दो दिन दिया, बाद में क्या हो गया उसको आलस आता है कभी कभी कि एकाधे दिन अच्छा सा ब्रह्मा भोजन बन गया, तो उसने कोई संग दोष में आकर कोई अच्छी सी चीज खा लिया, खाने के बाद क्या हो जाएंगे उसको आलस हो जाएंगे, ज्यादा ही खा लिया उसने तो बस उठते समय वो उठ पाएंगा नहीं। अमृत वेला यदि नहीं उठेगा समझो तो यदि उठ भी गया वो तो वो नींद आएंगी उसको, नींद में तो उसको सकास दे नहीं सकता। और सकास में ऐसा रहता है कि हमारे लिंग जुटी रहे क्योंकि उसमें गैप नहीं पड़नी चाहिए। जैसा 11 दिन का किसी ने प्रोग्राम रखा है समझो तो 11 दिन तक उसको हमको सकास देना पड़ेगा, उसमें एक भी दिन की गैप नहीं पड़नी चाहिए। यदि गैप पड़ेंगी तो फिर वो जिस कार्य के लिए हम उसको सकास दे रहे उसमें ये सफलता नहीं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसा आलस्य यानी उसमें विघ्न रूप बन जाता है, तो ये आलस्य भी नहीं चाहिए। कभी हम अमृत वेला उठते कभी आलस आ जाता है तो उठने के लिए और बोलते हैं कि सवेरे तो बहुत अच्छी नींद आती है तो चलो भाई और थोड़ा सा 10 मिनट सो जाए, ऐसा किसी को संकल्प आते फिर सो जाते हैं और जब उठते देखते एकदम 6 बज गया तो फिर वो समय तो उसका निकल जाएगा ना सकास देने का। इसलिए सकास देने के लिए जो समय हमने निश्चित किया उसी समय पर देना पड़ेगा। यदि स्थान का लगे तो आगे पीछे कर सकते क्योंकि स्थान हम किसी स्थान से दे सकते समझो कभी हमको यहाँ से कहना बाबा किसी ने ये किया कि बाबा के कमरे में बैठकर उस आत्मा को सकास देना है, कभी कभी अचानक कोई उसकी सेवा आ जाती है शांति वन में जाने का ये होता है उसको तो वहां से ही वो दे सकता है सकास, लेकिन जो समय है वो समय उसी समय पर देना पड़ेगा तब वो सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए ये आलस्य और अलबेलापन है ये भी विघ्न रूप बन सकता है। और अगला है स्वार्थ मैंने व्यर्थ संकल्प, ये व्यर्थ संकल्प भी क्या है कठिनाइयां सकास देने में पैदा कर सकती है। जैसा वो व्यर्थ संकल्प यदि मन में चला तो फिर अपनी यानी बुद्धि इधर उधर भटकेंगे क्योंकि सकास देने के लिए हमारी बुद्धि की क्या चाहिए एकर स्थिति चाहिए एकाग्रता चाहिए। यदि बुद्धि में एकाग्रता नहीं है तो हम सकास भी नहीं दे सकते, इसलिए व्यर्थ से हमें मुक्त बनना पड़ेगा। तो कभी व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब व्यर्थ बातें हमारे अंदर आती रहती है तो वो तो समर्थ बनना पड़ेगा व्यर्थ से मुक्त समर्थ बनने के लिए। जैसा सारे दिन में जिस व्यक्ति के अंग संग में आते हम तो परचिंतन परदर्शन चलता है, तो परदर्शन परचिंतन से हमें मुक्त रहना पड़ेगा। तो यदि अज्ञान व्यक्ति हमारे संपर्क में आया तो उसको ज्ञान की बातें सुनाओ या बाप का परिचय दो या ज्ञानी व्यक्ति आया तो उसके साथ आज मुरली में क्या बात है, उसकी पर रू रियान करो तो क्या हो जाएगा। यानी एक तो बाबा का संदेश भी उनको पहुंचेगा, हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी और व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो व्यर्थ बातें हैं वो भी सका देने में कठिनाई पैदा कर सकती है, इसलिए भी व्यर्थ से मुक्त बनना है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थ, यानी स्वार्थ भाव। यदि स्वार्थ भाव से हम यदि सका देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यानी कठिनाई पैदा कर सकता है। इसलिए मैं स्वार्थ से मुक्त बनना है। कभी कभी कई लोग स्वार्थ के कारण ही सकार देते, जैसा कल सुशील भाई जी ने बताया था कि जैसा पानी की जरूरत है तो प्रकृति को हम वाइब्रेशन दे देगा, पानी आना चाहिए। यदि पानी आ गया तो हमारा तो फायदा होगा, लेकिन जिसको पानी की जरूरत नहीं उसका नुकसान हो जाएगा ना। तो इस प्रकार ऐसा स्वार्थ भाव से भी हमें प्रकृति को ये नहीं करना चाहिए कि उससे सभी का भला हो जाए, इस प्रकार का संकल्प रखते ही करना है। वही नहीं क्या करती, जैसा स्वार्थ के लिए सकार देती, जैसा हमारा सेंटर बढ़ जाए, सेंटर बढ़ जाए, वहाँ के बहुत अच्छे स्टूडेंट बढ़ जाए, हमें जगह मिल जाए सेंटर बनाने के लिए, या सेंटर में अच्छा धन सफल करने वाले स्टूडेंट मिल जाए। यदि इस भाव से यदि हम सकार देंगे या मनसा सेवा करेंगे तो उसमें सफलता तो भले ही मिलेंगी, मगर जो खुशी मिलनी चाहिए हमें वो खुशी नहीं मिलेंगी और हमारा भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए जो भी हमें सकार देना है तो वो निस्वार्थ भाव से देना है। यदि स्वार्थ भाव रख करके यदि हम देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी, यानी खुशी नहीं मिलेगी, हमारा भाग्य नहीं बनेगा। तो ये निस्वार्थ भाव से सकार देना है। अगला है यानी एकाग्रता, यानी सकार देने के लिए एकाग्रता की भी शक्ति चाहिए। यदि एकाग्रता हमारे अंदर नहीं है तो हमारे मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो जाएंगी और हम सकार देने में कठिनाई आ जाएंगी। इसलिए हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता में इतनी शक्ति रहती है कि हम विश्व के इस कोने में बैठे दूसरे कोने में यदि कोई आत्मा बैठा ही होगा और उसको यदि हमें संकल्प देना है तो एकाग्रता की शक्ति स्ट्रांग रही तो हमारा संकल्प उस आत्मा तक पहुंच सकता है। उसके लिए हमारे सचिन भाई जी एक अच्छी कहानी सुनाती है, वो भी मैं शॉर्टकट में सुना देता हूँ। जैसा एक गुरु और शिष्य रहता है, वो कहीं जाना रहता है उसको, तो सवेरे सवेरे वो अपने आश्रम से निकलती है और रास्ते में जाते समय थोड़ा बहुत वो भोजन ले लेते कि अपन खा लेंगे वहाँ पर रास्ते में। तो जाते समय जंगल में एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते, तब तक दोपहर हो रही होती है। तो दोपहर के समय वो अपना भोजन निकालते और जो भी भोजन है दोनों ही खा लेते हैं, उसका गुरु और शिष्य। और थोड़ा पानी रहता है उनके पास, पानी भी पी लेती है। बाद में थोड़ी रेस्ट करते, बाद में शिष्य गुरु को पूछता है कि अपने जिस स्थान पर जाना है वो स्थान कब पहुंचेंगे अपन। तो वो बोलते दूसरे दिन पहुंचेंगे अपन। तो वो बोलते दूसरे दिन पहुंचेंगे, मगर अभी रात का भोजन कहाँ करेंगे। उसका संकल्प चलता है कि रात का हमारा प्रबंध कैसा होगा, हम क्या खाएंगे। तो फिर गुरु कहता है वो प्रबंध हो जाएगा, आप शांत बैठ जाओ। बाद में गुरु थोड़ा ध्यान योग करते हैं, वहाँ पर थोड़ी तपस्या करता है और बाद में वो दोनों लोग आगे के रास्ते के लिए निकल जाती है। थोड़ा समय चलती है, चलने के बाद एक गांव लगता है। उस गांव में वो गुरु आगे आगे रहता है, उसके पीछे पीछे शिष्य जाते हैं। बाद में जाते जाते एक होटल उनको दिखता है, वो होटल के सामने वो गुजर रहती है। तो उस होटल के मालिक दो व्यक्ति के साथ उसके स्वागत के लिए पहले तैयार रहता है। जैसे ही जाती है तो इनका स्वागत करते वो गुलदस्ता देती है और बाद में सम्मान के साथ वो अपने होटल में उनके लिए जो अच्छा सा कमरा उसने सजा के रखा है उस कमरे में रहने का वो प्रबंध कर देती थी। गुरु को आश्चर्य, शिष्य को आश्चर्य लगता है, कहीं इतना सारा हुआ कैसा, ये गाँव में हम पहली बार आए हैं, कभी इसके साथ कोई हमारा परिचय भी नहीं है, इतनी उसने कैसा प्रबंध कर लिया। मगर उस समय वो गुरु को पूछ नहीं सकता। बाद में वो होटल का जो मालिक रहता है उनका भोजन का प्रबंध करता है, बाद में उसका भोजन हो जाता है, भोजन के बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में आते हैं। तब वो शिष्य उसको पूछता है कि ये कैसा हो गया। तब वो गुरु बोलता है एकाग्रता की शक्ति से, कि जिस समय आपने बोला था कि आपको अपना रात्रि का प्रबंध कैसा होगा भोजन का, तो उस समय भी मैंने वो व्यक्ति को यानी एकाग्रता के साथ संकल्प दे दिया था कि ये हमारा प्रबंध करेगा। तो इस प्रकार वो कहानी है। तो देखो यानी एकाग्रता में इतनी शक्ति रहती है कि यदि हम किसी आत्मा को कोई संकल्प दिया और स्ट्रांग हमारी एकाग्रता की शक्ति रही तो वो वहां तक पहुंच जाता है। तो यदि एकाग्रता शक्ति में यदि कम है तो फिर हम सकास में कठिनाई आ सकती है, तो इसलिए हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो अगला पॉइंट है वाइब्रेशन का प्रभाव, कि जो वाइब्रेशन है वायुमंडल है उसका ही प्रभाव यानी सकास देने पर पड़ सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति किस वायुमंडल में रहता है उस वायुमंडल में जो रहते हैं वो जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का वायुमंडल कैसा है, वहाँ के जे सेवा साथी है या अंग संग में रहने वाले लोग है वो किस टाइप के, यदि वो हमेशा उनके स्वभाव संस्कार के साथ टकराव होता होगा, वो दुख देने वाले होते होंगे तो सकास देने वाले की क्या स्थिति ऊपर नीचे होती रहेंगी, या उसका बड़े लोग है उनको डांट फटकार लगाते होंगे, और यदि वो व्यक्ति सकास देने के लिए बैठेगा तो वो उस समय सकास नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस समय डांटने मगर वो उनकी स्थिति बनानी पड़ेगी ना उसको उतनी पावरफुल, यदि उसके अंदर उतनी स्थिति नहीं पावरफुल समझो और दिन भर में डांट फटकार सुन रहा है और बाद में वो किसी को सकास दे रहा है तो वो भी सकास में ये सक्सेस नहीं होगा, वो सफलता नहीं मिल सकेंगी। तो इस प्रकार सकास देने के लिए भी क्या चाहिए, वायुमंडल पॉजिटिव चाहिए। निगेटिव वायुमंडल है तो निगेटिव वायुमंडल और अंग संग में रहने वाले लोगों से यदि तकलीफ होती होंगी तो वो सकास देने में कठिनाई आ सकती है। तो इस प्रकार ये 10 पॉइंट हुए। तो उसमें से पहला आत्मिक स्मृति यानी देह भान को भूलना पड़ेगा और आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना पड़ेगा तभी हम सकास दे सकते हैं। और दूसरा है शुभ भावना, शुभ कामना में हमको अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी अनबैलेंस हो गया तो हम सकास दे नहीं सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कनेक्शन, परमात्मा और आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। चौथा है यानी स्टॉक, ज्ञान का गुण का और शक्ति का स्टॉक हमारे पास भरपूर चाहिए तब हम सकास की सेवा कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट है अपवित्रता, अपवित्रता यदि रही तो हम सकास नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है यानी आलस्य और अलबेलापन। नेक्स्ट और व्यर्थ से मुक्त। अगला है स्वार्थ भाव नहीं है रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से ही हम रहे तो हम कठिनाई आ सकती है। उसका नेक्स्ट है एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति की कमी रही तो हम सकास नहीं दे सकते। और लास्ट है वो वायुमंडल का प्रभाव। ओम शांति।
सभी हो सुखी शांत शुभ कामना।